नमस्कार भारत। 20 जनवरी दिन शनिवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, चरमपंथ नहीं बल्कि चीन रूस के साथ प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा ध्यान देंगे।
We face growing threats from revisionist powers as different as China and Russia are from each other.
करेंगे विश्लेषण इसराइली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का।
कहीं पर ये कोशिश हो रही है दोनों तरफ से कि ये रिलेशनशिप सिर्फ डिफेंस तक सीमित ना रहे, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ एक पिलर पर सस्टेन नहीं की जा सकती।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की कुर्सी खतरे में।
पार्टी दलदल में चली गई है इस समय। सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का मतलब ये है कि कुछ महीनों के भीतर दोबारा चुनाव होंगे।
समाचार पत्रों की सुर्खियां और सुनेंगे आप विवेचना आज भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य अब चरमपंथ से लड़ने की बजाय चीन और रूस जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से मुकाबला करने पर होना चाहिए। जनरल मैटिस ने चेताया कि अमेरिका युद्ध के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खोता जा रहा है। उन्होंने सेना को मिलने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी करने की भी अपील की। जनरल मैटिस ने चीन पर अपने पड़ोसी देशों को धमकाने की नीति अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने रूस पर अन्य देशों की सीमाओं का उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए। रूस ने इन आरोपों पर अफसोस जताया है और कहा है कि अमरीका टकराव की रणनीति के जरिए अपना नेतृत्व साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि अल सीसी को दोबारा राष्ट्रपति पद प्राप्त करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाले अहमद शफीक ने पिछले महीने ही खुद को दौड़ से बाहर कर लिया था। पूर्व सेना प्रमुख अल सीसी साल 2014 में मोहम्मद मोरसी के हटने के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुए थे। काहिरा में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, मुझे आज वो पल दोबारा याद आ रहे हैं जिन्हें पार कर हम आगे बढ़ गए। हमारे देश ने कई चुनौतियों का सामना किया। मैं आप सभी के सामने राष्ट्रपति पद के रूप में अपनी दावेदारी पेश करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस पद पर दोबारा स्वीकार करेंगे। ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने यूरोप को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जर्मनी और फ्रांस के बीच बेहतर संबंधों पर जोर दिया है। उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा,
Im Gegensatz zu der Zeit vor 55 Jahren ist natürlich heute auch die deutsch-französische Freundschaft und
zusammen मौजूदा वक्त में यूरोप को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के बीच दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। हमारे बीच ज़्यादातर बातचीत द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई। इसके अलावा तकनीक, विज्ञान, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। कोलंबिया का कहना है कि उसके देश में 500,000 से ज़्यादा वेनेजुएला से आए शरणार्थी रह रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले 6 महीनों में 60% बढ़ गया है। कोलंबिया के प्रवासन अधिकारियों के अनुसार वेनेजुएला के अधिकतर शरणार्थी अवैध रूप से कोलंबिया में रह रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 10 लाख से अधिक वेनेजुएला वासियों ने माइग्रेशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, जिसकी मदद से वे सीमा पार कर खाने का सामान और अन्य सामग्री खरीद सकते थे। सीरिया और इराक में जारी युद्ध पर नजर रखने वाले एक संगठन एयरवॉर्स ने कहा है कि पिछले साल अमरीकी नेतृत्व में हुए हमलों में कम से कम 3,900 नागरिकों की मौत हुई। हालांकि इस समूह का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा 6,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। फेसबुक ने अपनी न्यूज़ फीड में बदलाव करने की घोषणा की है। ये बदलाव सनसनीखेज समाचार, गलत सूचनाएं और ध्रुवीकरण संदेश फैलाने को रोकने के मकसद से किया जा रहा है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अब फेसबुक यूजर से पूछा जाएगा कि वे किस समाचार स्रोत पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली खबरों को महत्व दिया जाएगा। इसी महीने की शुरुआत में जकरबर्ग ने न्यूज़ फीड के बिजनेस और ब्रांड को प्रमोट करने के बजाय परिवार और दोस्तों की पोस्ट को अधिक महत्व देने की बात कही थी। बीबीसी समाचार।
स्वागत सभी श्रोताओं का बीबीसी हिंदी सेवा से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमेरिका अब चरमपंथ की जगह रूस चीन जैसी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा ध्यान देगा। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं दिनेश उप्रेती।
अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमेरिकी सेना को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए और चरमपंथ से लड़ने के बजाय अब अपना ध्यान रूस और चीन जैसी प्रतिस्पर्धी ताकतों पर बढ़त हासिल करने पर लगाना चाहिए। राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिका की रक्षा नीति में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि रूस और चीन अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं।
We face growing threats from revisionist powers as different as China and Russia are from each other.
रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस कह रहे थे कि हमें चीन और रूस के रूप में बड़ी शक्तियों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है जो कि राष्ट्रों को अपने सत्तावादी मॉडल के अनुरूप बनाना चाहते हैं। ये देश अन्य देशों के आर्थिक कूटनीतिक और सुरक्षा फैसलों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि अमरीकी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने सेना के लिए बजट बढ़ाने की भी अपील की।
Failure to modernize our military risks leaving us with a force that could dominate the last war.
हम अपनी सेना को आधुनिक नहीं बना पाए तो जंग तो जीत सकते हैं लेकिन ये भविष्य की सुरक्षा के लिए अप्रासंगिक है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि पिछले 16 सालों में हमारी सेना को जंग के मैदान में उतना नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया जितना कि बजट नियंत्रण और रक्षा खर्चों में कटौती जैसे कदमों ने। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के इन बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका नहीं चाहता कि उसकी सुपर पावर को कोई देश चुनौती दे और इसीलिए वो कई मौकों पर उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने वाले रूस और चीन पर निशाना साध रहा है।
जैसा कि अभी आपने दिनेश उप्रेती की इस रिपोर्ट में सुना, रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीबीसी के रक्षा और कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस ने इस बदलाव संबंधी इशारे का विश्लेषण किया है। सुनिए नवीन नेगी की जुबानी।
11 सितंबर 2001 को हुए चरमपंथी हमले के बाद लगभग दो दशक तक अमरीकी सेना का पूरा ध्यान चरमपंथ के खिलाफ लड़ने पर रहा। अमरीकी सेना ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में चरमपंथ विरोधी अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अब अमरीकी सेना रूस और चीन जैसे अपने परंपरागत प्रतिद्वंदियों के मुकाबले खुद को मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है। अमरीकी रक्षा मंत्री का ये बयान बिल्कुल सही है कि अमरीका की सैन्य बढ़त अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले तेजी से घट रही है। अब जरूरत नई तकनीक के लिए निवेश बढ़ाने की है ताकि जंग के मैदान में विरोधियों को चित किया जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और बात सिर्फ अधिक धन खर्च करने की भी नहीं है। अमरीकी रक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में कहा कि दिक्कत ये है कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा बजट सीधे सेना तक नहीं पहुंचा है और इसने अमरीकी सेना की तैयारियों को जंग के मैदान में दुश्मनों के मुकाबले अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह पहली बार है जब ट्रंप प्रशासन की रक्षा नीतियों पर खुलकर बात हुई है। जो आशंकाएं और खतरे गिनाए जा रहे हैं अमरीकी प्रशासन में वो पहले भी मौजूद थे लेकिन तब प्राथमिकताएँ अलग थी।
अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव के संकेत बीबीसी के रक्षा और कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस का विश्लेषण।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
दिल्ली में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सिफारिश की है। इन विधायकों पर संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद लेने का आरोप है। ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी की सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यही समझने के लिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद ने राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी से बात की।
चुनाव आयोग से जो गया है अभी रिकमेंडेशन जो भी, इसको मेरा ख्याल है कि कम से कम 4-5 महीने पहले या और थोड़ा पहले चला जाना चाहिए था। किस कारण से इसमें विलंब हुआ ये अभी हम नहीं कह सकते, पर ये काफी समय पहले ही इसको हो जाना चाहिए था क्योंकि सुनवाई पूरी हुए समय हो चुका है। दूसरा ये कि जिम्मेदारी जो भी है, जो अच्छाई या बुराई इसकी है, वो तो आम आदमी पार्टी या उसने जो भी फैसला किया था उसी के साथ जुड़ी हुई है, और उसको ही इसके अच्छे या बुरे जो भी परिणाम होंगे, हमें नहीं मालूम कि क्या सिफारिशें हैं या क्या कहा गया है, शायद उनकी सदस्यता समाप्त करने के बारे में सिफारिश होगी, तो इसका नुकसान तो फिर आम आदमी पार्टी को ही होना है।
जो ये लाभ के पद की बात हो रही है तो ये तो अभी कोर्ट को तय करना है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक नफे नुकसान
के कोर्ट में जो तय होना है वो तो कह नहीं सकते क्या होगा, पर ये जो सिफारिश है चुनाव आयोग की, ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के वही होगा जो सिफारिश को किया गया है, वहाँ बदलने की कोई संभावना नहीं। पार्टी दलदल में चली गई है इस समय फिलहाल। सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का मतलब ये है कि अगला एक कदम और होगा, वो ये कि कुछ महीनों के भीतर दोबारा चुनाव होंगे, अगर ये सारी प्रक्रियाएं किसी कानूनी पेच में नहीं फंसी तो। और उस चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी 10 में से कुछ सीटें हार गई तो वो उसके लिए नुकसानदेह होगा, और अगर जीत गई तो वो उसके लिए बहुत लाभकारी होगा, लेकिन अगर नहीं जीती तो वो उसके लिए भविष्य में, क्योंकि आप गौर करिए ये चुनाव अगर 5 या 6 महीने के भीतर भी हुए, उसके फौरन बाद कुछ दिनों बाद 2019 के चुनाव होंगे, और उसके एक साल बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव फिर 2020 में होंगे, तो इन सबका परिणाम, इनका सबका कैस्केडिंग जो इफेक्ट होगा वो दिखाई पड़ेगा, यानी एक बात दूसरे पर असर डालेगी जो अगली आने वाली घटना है। तो ये एक प्रकार की जो कहिए कि पत्थर पहाड़ से गिरने शुरू हुए हैं जो अब लुढ़कते चले जाएंगे, आगे क्या होगा अनुमान ही लगाया जा सकता है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की कुर्सी खतरे में, और इसका विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। दोस्ती के नए तरानों के बीच भारत इसराइल के दरमियान कुछ समझौतों पर दस्तखत करके इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अपने देश वापस चले गए हैं। इसराइली प्रधानमंत्री का 6 दिन का भारत दौरा कितना सफल रहा, इस यात्रा के मायने क्या थे, सुनिए मोहम्मद शाहिद की इस रिपोर्ट में।
The world knows about iPod, they know about iPad. Well, there's one more I that the world needs to know about. I create.
इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 5 दिन से अधिक समय तक चले अपने भारतीय दौरे के दौरान ये बात कही थी। आखिरकार उनका दौरा कल समाप्त हो गया। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हुए इसराइली प्रधानमंत्री के इस दौरे को खासा महत्वपूर्ण समझा जा रहा था, और इसी के अनुरूप ये रहा भी। रक्षा सौदों से लेकर कई पुराने पड़े सौदों को भी हरी झंडी दी गई। इसराइल स्थित वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा इस दौरे को भारतीय इतिहास में एक नया आयाम जोड़ने वाला बताते हैं।
इस दौरे से ये बात तो स्पष्ट है कि भारत और इसराइल दोनों ही एक दूसरे का साथ जो संबंध है, तो उस संबंध में काफी गहराई आई है, वो संबंध है वो बेहतर हुए हैं। यहाँ पर 9 दोनों देशों के बीच जो है वो एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये जो सारे समझौते हैं अगर इसे अंजाम तक ले जाया जाए तो ये तय है कि अभी जो द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच है, जो कि तकरीबन $4.2 बिलियन का बताया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
भारत इसराइल के संबंधों को रक्षा व्यापार पर अधिक निर्भर समझा जाता है। 1 महीने पहले भारत इसराइल के बीच स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल की डील को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस दौरे के बाद मिसाइल का समझौता पक्का हो गया, जिसे रिश्तों की गर्माहट बताया गया। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ हर्ष पंत मानते हैं कि इसराइली प्रधानमंत्री का हालिया दौरा रक्षा सौदों तक ही सीमित नहीं था।
जो उन्होंने करने की कोशिश की है वो एक डिफेंस आगे ले जाने की कोशिश की है, उन्होंने इकोनॉमी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करी, टूरिज्म और बॉलीवुड को उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो कहीं पर ये कोशिश हो रही है दोनों तरफ से कि ये रिलेशनशिप जो सिर्फ डिफेंस तक सीमित ना रहकर और आगे बढ़े, और क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ एक पिलर पर सस्टेन नहीं की जा सकती।
ऐसा माना जाता है कि भाजपा सरकार के दौरान भारत इसराइल के संबंध ऊंचाई पर होते हैं। हरिंदर मिश्रा मानते हैं कि भाजपा सरकार भारत इसराइल संबंधों को खुलकर स्वीकार करती है।
एक बात जो स्पष्ट है कि जब भी यहाँ बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही, चाहे वो वाजपेयी सरकार हो या आज मोदी सरकार हो, एक खास गर्माहट देखने को मिलती है जो कि कांग्रेस की सरकार के दौरान देखने को नहीं मिलता है।
भाजपा और इसराइल के प्रेम का कारण राष्ट्रवाद को भी बताया जाता है। वहीं बहरीन और सऊदी अरब में भारतीय राजदूत रहे तलमीज अहमद हिंदू अतिवादियों के इसराइली प्रेम के लिए मुसलमानों को कारण बताते हैं।
हमारे देश के एक्सट्रीम राइट विंग है और इसराइल के एक्सट्रीम राइट विंग, उनका इस तरह का अप्रोच है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो जो वहाँ पे राइट विंग है हैं, उनकी जो आइडेंटिटी वो लोग बना रहे हैं, इसराइल की यहूदी आइडेंटिटी, उसमें वो अरब को पुराना दुश्मन, ऐतिहासिक दुश्मन समझते हैं, पैलेस्टीनियन ही नहीं अरब को देखते हैं। तो अरब क्योंकि ज्यादातर मुसलमान हैं, तो वो एक उसमें कोई एंटी मुस्लिम फीलिंग भी है।
अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित करने के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसराइल के रिश्ते भारत के साथ मजबूत दिखते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय इसराइल।
मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं, पर भारत को तेल चाहिए और कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी। इसराइल के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी तो अरब देशों से कैसे निभाएगा भारत, इस बार इसी विषय पर चर्चा होगी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 20 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, भारत में अब वक्त हो चला है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या बयां कर रहे हैं। दिनेश उप्रेती स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। इस खबर को लगभग सभी हिंदी और अंग्रेजी अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस ऑफ 20 MLA। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, आप अयोग्य हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, अब आपका क्या होगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, लाभ में आपको 20 विधायकों की हानि। जनसत्ता की हेडलाइन है, आपके 20 विधायकों पर तलवार। इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के हवाले से खबर दी है कि आयोग ने बगैर कोई सुनवाई किए आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फैसला सुनाया।
तो पहले पन्ने पर आप ही आप हैं, इसके अलावा और क्या खबरें हैं?
जी, चीन ने डोकलाम में अपने निर्माण कार्य को वैध बताया है, यानी कि डोकलाम फिर चर्चा में है। ये खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में। खबर में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारत को डोकलाम में उसके वैध निर्माण कार्यों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फ्लाइट में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को ट्राई की मंजूरी, इस खबर को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। टेलीकॉम अथॉरिटी ने सिफारिश की है कि घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस देने को मंजूरी दे दी जाए। ट्राई के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एयरलाइंस से चर्चा करने के बाद ये फैसला किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के वसुंधरा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। वसुंधरा सरकार ने वाजपेयी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के तुरंत बाद नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार भारत ऑस्ट्रिया ग्रुप यानी एजी का सदस्य बन गया है, इससे उसके NSG में सदस्यता की दावेदारी पुख्ता बनाने में मदद मिल सकती है।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती, बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियाँ। और श्रोताओं, मधुशाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही कालजयी रचना मधुशाला जिसे कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन ने कलमबद्ध किया, स्वरबद्ध भी किया। उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर रेहान फजल कुछ दिलचस्प पहलू आपके लिए लेकर आए हैं विवेचना में।
अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला।
ये आवाज है मधुशाला जैसी कालजयी रचना के रचयिता हरिवंश राय बच्चन की, जिनके बारे में मशहूर था कि उनके काव्य में भावों को शब्दों के बोझ तले घुटना नहीं पड़ता, जिंदगी के कड़वे सच और उलझे हुए विचारों को आसान शब्दों में कह देना बच्चन की खासियत थी। शायद यही वजह है कि हिंदी साहित्य की 3 सबसे ज्यादा बिकने वाली रचनाओं में मधुशाला की गिनती होती है।
कितने साकी अपनाए अपना काम खत्म कर दूर गए, ओ कितने पीने वाले आए, किंतु वही है मधुशाला।
1933 से शुरू हुई हरिवंश राय बच्चन की काव्य यात्रा 60 के दशक तक जारी रही। प्रख्यात साहित्यकार और धर्मयुग के संपादक रहे धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती बताती हैं।
हमारे पिताजी पढ़ाते थे, अध्यापक थे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के, और वो कवि सम्मेलन कराया करते थे हर साल। उस कवि सम्मेलन में बच्चन जी जरूर आते थे और जरूर बुलाए जाते थे, और वो सबसे अंत में सुनाते थे। तो हम क्या करते थे, पिताजी संयोजक थे तो हमको पीछे स्टेज के ऊपर बैठने को पीछे से मिल जाता था। हम अपना कंबल वगैरह लेके साथ में जाते थे, सर्दियों के दिन होते थे, हम पिताजी से कहते थे हमें नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे, और जब बच्चन जी सुनाने लगेंगे तब आप हमको प्लीज उठा दीजिएगा। विश्वास मानो आप ये कि ना तो बच्चन जी सुनाते थकते थे, ना जनता सुनते थकती थी। और उनकी मधुशाला तो लेकर के कितने घंटों तक सिर्फ मधुशाला वंस मोर होता रहता, और वो सुनाते जाते, और सवेरे होते मैंने देखी है अपनी आंखों से।
कम लोगों को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने और मशहूर अंग्रेजी कवि डब्ल्यू बी येट्स पर कैम्ब्रिज में शोध करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की गिनती हिंदी के उभरते हुए कवियों में होने लगी थी। हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
डैड कभी भी लिखने के मूड में होते हैं तो बाहरी जो चीजें हैं उन सबसे वो एकदम अलग कट जाते हैं, यानी घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बारे में वो कभी सोचते नहीं है। और हम लोग समझ जाते हैं कि अब उनका कुछ लिखने का मूड आया है, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिल्ली में तो ये था कि उनका जो कमरा था वो अंदर से वो बंद कर लेते थे और बाहर दो झंडे किस्म की चीजें लटका देते थे कि भाई अब मैं लिख रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यानी अगर एक झंडा लटका हो तो इसका मतलब हुआ कि भाई अंदर आना जाना हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ही जरूरी हो। अगर दो झंडे लटके हो इसका मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मना है। बैठते बैठते थक जाते थे तो वो खड़े हो जाते थे और खड़े होकर लिखते थे।
इलाहाबाद के दिनों में हरिवंश राय बच्चन की सबसे अधिक निकटता शमशेर बहादुर सिंह, पंडित नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुमित्रा नंदन पंत के साथ हुआ करती थी। अपनी आत्मकथा नीर का निर्माण फिर में बच्चन पंत और निराला का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
पंत और निराला एक दूसरे से जितने एलर्जिक थे उसका अनुभव पहली बार मुझे हुआ। निराला जी उन दिनों पहलवानी मुद्रा में रहते थे, पांव में पंजाबी जूता, कमर में तहमद, बदन पर लंबा ढीला कुर्ता और सिर पर पतली साफी, कहीं अखाड़ा लौटकर चेहरे और मुंडे सिर पर मिट्टी भी पोताते थे। एक दिन तो निराला जी मेरे ड्रॉइंग रूम में आधमके और उन्होंने पंत जी को कुश्ती के लिए ललकारा। वो बोले, मैं निराला नहीं हूं, मुत्तन खां हूं, टुट्टन खां का बेटा। बोलते बोलते उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपनी साफी को अपनी कमर पर लंगोट के तौर पर लपेट लिया। फिर वो दंड बैठक कर ताल ठोंकने लगे। जब उन्हें पंत जी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो निराला ने मेरी तरफ देखकर कहा, वो नहीं तो तुम ही सही। मैंने कहा, मैं आपका पैर छूने लायक भी नहीं हूं, कुश्ती क्या लड़ूंगा आपसे। इस पर निराला थोड़े ठंडे हुए। मैंने कहा, आपके लिए चाय बनवाई जाए। निराला बोले, मुझे चाय के लिए तो बुलाया नहीं गया। हाँ, पानी जरूर पी सकता हूँ, पीतल के गिलास में मंगवाना। पानी आते ही उन्होंने उसके कुछ घूंट लिए और घर से बाहर चले गए।
हरिवंश राय बच्चन की 1941 में तेजी सूरी से शादी हुई थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। तेजी ने एक बार बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में उस पहली मुलाकात को याद किया था।
जब मैंने बच्चन जी को इतने साल पहले पहली बार मिली तो मुझे एक कमरे में जब वो आए तो एक आदमी दुबला पतला निराशा की मूर्ति जैसे मेरे सामने आई। कुछ स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है तो मैं सोचती हूँ मुझमें अधिक है। अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरा उस वक्त ऐसा मन आया और मैं उनकी तरफ जो खिंची तो उनकी ये निराशामय मूर्ति जो थी मुझे ज्यादा उनकी तरफ पास आने के कारण बनी।
पुष्पा भारती ने 1968 में हरिवंश राय बच्चन को बम्बई के अपने फ्लैट पर अपनी रचनाएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, जहां धर्मवीर भारती ने उनकी कुछ रचनाएं छाटी और उन्होंने उनका सस्वर पाठ किया।
बच्चन जी की ये शाम अद्भुत इसलिए भी थी कि इसमें अमिताभ भी आया था, और अमिताभ का तब तक बहुत ज्यादा नाम तो नहीं हुआ था लेकिन लोग पहचानने लगे थे। वो थोड़ी देर तो बैठा बैठा सुनता रहा, बाद को हमने देखा कि वो चुपचाप उठ करके उस मुंडेर पर चला गया था, हाथ में कॉफी का प्याला ले लिया और मुंडेर पर जाके खड़ा होके बस समुंदर देखता रहा था अपने में डूबा हुआ। और वहीं हम लोगों ने एक छोटी सी अच्छा सा गद्दा बिछाया था छोटी सी मेज लगा दी थी बच्चन जी उस मेज के पास गद्दे पर बैठे थे गाँव तकिया लगाए हुए और भारती जी बगल में जमीन पर उनके पास बैठे थे और उनकी किताबों की गड्डी अपने पास रख ली थी उसमें चिटें लगा ली थी कि उनसे क्या क्या फरमाइश करनी है एक एक चिट उठाते जाते थे और बच्चन जी के आगे किताब कर देते थे। आप बिल्कुल भी विश्वास करिए कि वैसा कविता पाठ हमने तो कभी सुना ही नहीं है।
तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए मेरे बरनु बरनु विशृंखल चरण चरणु भरुमाए गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए।
इसी तरह का एक मौका भारत के विदेश सचिव रहे महाराज कृष्ण रसगोत्रा को भी मिला था। उस समय वो नेपाल में तैनात थे और हरिवंश राय बच्चन सपरिवार उनके साथ काठमांडू में ठहरे थे।
एक तो बच्चन जी का रिसाइटल निशा निमंत्रण आपने सुना होगा 9:30-9:10 बजे उन्होंने शुरू किया और कुछ इंटरवल करते करते 100 कविताएं हैं उसमें सब उन्होंने रिसाइट की और एक ऐसा वो तांता बद्धा एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ आपको उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अंग्रेजी में कहूँ कि इट वॉज ए नाइट ऑफ कथारसिस फॉर बच्चन जी फॉर मी हिज अदर फ्रेंड एंड फॉर द नेपलीज हु वर पार्टिसिपेंट्स इन दिस ओकेजन। ये अमिताभ और बंटी छोटे जो हैं अजिताभ ये तो छोटे छोटे बच्चे थे को हम खिलाते वाते थे वहाँ घुमाते थे फिर आते थे। तेजी तो कमाल की औरत थी वो क्या उनकी आवाज़ जो बच्चन जी का रिसाइटल उनकी जुबान से जो हमने सुने हैं वो ऐसा हृदय में एक पैदा करते थे भाव और खूबसूरत लेडी थी।
रात यादी हो गई है जागता मैं आंख फाड़े हाय सुदियों के सहारे जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में सो गई है।
कवि बच्चन ने मधुशाला के बराबर ही नाम कमाया 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखकर। धर्मवीर भारती ने उसके बारे में एक बार कहा था कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी और साहस से पहले कभी नहीं कहा गया।
अगर मुझसे कहो कि अपने पसंद की तुम 3 किताबों के नाम लो तो पहली किताब क्या भूलू क्या याद करो। ये केवल आत्मकथा नहीं है उस समय का भारत है उस समय की आर्थिक व्यवस्था है उस समय के मानव मूल्य है उस समय के प्रेम को और विविधताओं को लेकर के जो विचारधाराएं थी जो हमारे पराधीन भारत में जो गलत प्रथाएं चलती थी हर चीज का वर्णन है। आदमियों के बीच में रिश्ते कैसे होते थे मनुष्यों के बीच में ये सारी बातें हमें पूरी तरीके से समझ में आती है हम कोई इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो ये जो चीज है और ऊपर से जो अपने जीवन की जो बातें करते हैं इतनी सीधी और सच्ची कि हम एक एक दृश्य देखता हुआ चलते हैं उसका।
जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है और जितना ही जो रसिकू से है उतनी रसमय मधुशाला।
रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमरीका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव कर चरमपंथ की बजाय चीन और रूस जैसी प्रतिस्पर्धी ताकतों से मुकाबला करने पर ध्यान देना चाहिए। जेम्स मैटिस ने चीन पर अपने पड़ोसी देशों को धमकाने और रूस पर अन्य देशों की सीमाओं का उल्लंघन करने के आरोप भी लगाए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आवेदन करने की घोषणा की। साल 2014 में मोहम्मद मोर्सी के हटने के बाद अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने यूरोप को अधिक मजबूत बनाने के लिए जर्मनी और फ्रांस के बीच बेहतर रिश्तों की वकालत की। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत में अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और समाचार सुने आपने नवीन नेगी की जुबानी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में हमें आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।